अध्याय 25 सिदकिया का विद्रोह और उसकी पराजय। उस समय सिदकिया ने बाबुल के राजा के विरुद्ध विद्रोह किया। सिदकिया के राज्यकाल के 9वें वर्ष 10वें महीने के 10वें दिन बाबुल का राजा नबूकदनेज़र अपनी समस्त सेना के साथ यरूशलेम पर आक्रमण करने आया। उसने नगर के सामने शिविर डाला और उसे चारों ओर से घेर लिया। ये घेराबंदी सिदकिया के राज्यकाल के 10वें वर्ष तक बनी रही। उस वर्ष के 4थे महीने के 9वें दिन नगर की चारदीवारी में दरार की गई, क्योंकि नगर में अकाल पड़ा था और खाने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं रह गया था। यद्यपि खलदेई नगर के चारों ओर पड़े हुए थे, फिर भी सब सैनिक राजकीय उद्यान के पास की दो दीवारों के बीच वाले फाटक से रात को नगर से बाहर निकले और अराबा की ओर भाग गए। खलदेइयों की सेना ने राजा का पीछा किया और उसे यरीखो के मैदान में घेर लिया। उस समय तक उसकी सारी सेना तितर बितर हो गई थी। खलदेइयों ने राजा को पकड़कर रिबला में बाबुल के राजा के सामने उपस्थित किया। वहां नबूकदनेज़र ने सिदकिया को दंडाज्ञा दी और उसके पुत्रों को अपने सामने मरवा डाला। इसके बाद उसने सिदकिया की आंखें निकाली और उसे कांसे की बेड़ियों से बांधकर बाबुल भेज दिया। नबूकदनेज़र के राज्यकाल के 19वें वर्ष 5वें महीने के 7वें दिन बाबुल के राजा के सेनापति और उसके अंगरक्षकों के नायक नबूज़रदान ने यरूशलेम में प्रवेश किया। उसने प्रभु का मंदिर, राजा का महल और यरूशलेम के सब घर जला दिए। उसने यरूशलेम के सब बड़े भवन भस्म कर दिए। अंगरक्षकों के नायक के साथ जो खलदेई सेना आई थी, उसने यरूशलेम की चार दीवारी गिरा दी। नगर में जो निवासी रह गए थे, जो लोग बाबुल के राजा के समर्थक बन गए थे और जो भी कारीगर शेष रह गए थे, उन सबों को अंगरक्षकों के नायक नबूजर अदान ने निर्वासित किया। उसने दाखबारियों और खेतों में काम करने के लिए जनसाधारण के कुछ ही लोगों को छोड़ दिया। खलदेइयों ने प्रभु के मंदिर के कांसे के खंभे, ठेले और कांसे का हौज टुकड़े टुकड़े कर दिया और उनका कांसा बाबुल ले गए। वे पात्र, फावड़ियां, कैंचियां, कलछियां और कांसे के सब सामान ले गए जो मंदिर की सेवा के काम आते थे। अंगरक्षकों का नायक लोबान के पात्र, कटोरे और वह सब कुछ जो सोने और चांदी का था ले गया। सुलेमान ने प्रभु के मंदिर के लिए जो दो खंभे, हौज और ठेले बनवाए थे, उनके कांसे का वजन इतना अधिक था कि वो तौला नहीं जा सकता था। हर खंभे की ऊंचाई 18 हाथ थी और उसके ऊपर 3 हाथ ऊंचा कांसे का शीर्ष था। स्तंभ शीर्ष के चारों ओर कांसे की जाली और अनार थे। अंगरक्षकों के नायक ने प्रधान याजक सराया, दूसरे याजक सफन्या और 3 द्वारपालों को, एक पदाधिकारी को जो सैनिकों का प्रधान था, और राजा के 5 मंत्रियों को भी जो उस समय नगर में उपस्थित थे, बंदी बनाया। और इसके अतिरिक्त सेनापति के सचिव को, जिसने लोगों को सेना में भर्ती किया था, और देश के 60 व्यक्तियों को जो उस समय नगर में उपस्थित थे। अंगरक्षकों के नायक नबूज़रदान ने उन्हें बाबुल के राजा के पास रिबला भेज दिया। बाबुल के राजा ने उन्हें हमात प्रांत के रिबला में मरवा डाला। इस प्रकार यूदा के लोगों को अपने देश से निर्वासित किया गया। गदल्या यूदा का राज्यपाल। बाबुल के राजा नबूकदनेज़र ने अहिराम के पुत्र और शाफान के पौत्र गदल्या को उन लोगों पर राज्यपाल नियुक्त किया जिन्हें उसने यूदा में छोड़ दिया था। जैसे ही सब सेनापतियों और सैनिकों ने सुना कि बाबुल के राजा ने गदल्या को राज्यपाल नियुक्त किया है, वैसे ही वे अपने सैनिकों के साथ गदल्या के पास मिस्पा आए। उनके ये नाम थे: नतन्या का पुत्र इस्माएल, कारेह का पुत्र योहानान, नटोफा वासी तनहुमेत का पुत्र सराया और माकावंशी का पुत्र याजन्या। गदल्या ने उन्हें और उनके सैनिकों को शपथ पूर्वक विश्वास दिलाया कि तुम खलदेई पदाधिकारियों से मत डरो, तुम बाबुल के राजा के अधीन होकर इस देश में निवास करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन सातवें महीने में नतन्या का पुत्र एलिशामा का पौत्र इस्माएल, जो राजा के घराने का था, 10 आदमियों को साथ लेकर आया और गदल्या तथा मिस्पा में उसके साथ के यहूदियों और खलदेइयों पर आक्रमण कर उनका वध किया। इसके बाद यूदा के सब छोटे बड़े लोग और सभी सेनाध्यक्ष भागकर मिस्र चले गए, क्योंकि वे खलदेइयों से डरते थे। यहोयाकीन के साथ नए राजा की सहानुभूति। यूदा के राजा यहोयाकीन के निर्वासन के 37वें वर्ष 12वें महीने के 27वें दिन बाबुल के राजा एविल मरोदाक ने अपने शासन के प्रथम वर्ष में यूदा के राजा यहोयाकीन को क्षमा कर दिया और उसे बंदीगृह से मुक्त कर दिया। उसने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और बाबुल में उसके साथ रहने वाले राजाओं में उसे सर्वोच्च आसन दिया। यहोयाकीन ने कैदियों जैसे अपने वस्त्र उतार दिए और वो जीवन भर राजा के यहां भोजन करता रहा। वो जब तक जीता रहा तब तक उसे राजा से प्रतिदिन दैनिक भत्ता मिलता रहा।